आज है 22 अक्टूबर दिन शनिवार। स्वागत है आपका इंडिया बोल में। मैं हूं सुशीला सिंह। इधर त्योहार का मौसम, उधर चीनी सामानों के बहिष्कार की उठी मांग। कांग्रेस, बाबा रामदेव और अन्य संगठनों ने कहा भारतीय व्यापारियों को हो रहा है नुकसान, लगे चीनी सामान पर रोक। केंद्र सरकार ने कहा कोई पाबंदी नहीं तो चीनी सामान बेचने वाले व्यापारी हैं परेशान। क्या रोक लगाई जानी चाहिए, कितना असर पड़ सकता है दोनों देशों के रिश्तों पर, इसी मुद्दे पर होगी इंडिया बोल में बहस सबसे थोड़ी देर में। पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार वात्सल्य राय से। अफगानिस्तान के एक राजनयिक का कहना है कि तालिबान के 3 वरिष्ठ सदस्य पाकिस्तान में हैं। उनके और पाकिस्तान के अधिकारियों के बीच कई दौर की बैठकें हुई हैं। एक वरिष्ठ तालिबानी अधिकारी के मुताबिक पाकिस्तान गए प्रतिनिधिमंडल में 2 पूर्व मंत्री और पाकिस्तान में अफगानिस्तान के राजदूत रहे मौलवी शहाबुद्दीन दिलावर शामिल हैं। कुछ सूत्रों का कहना है कि तालिबान और अफगानिस्तान सरकार के बीच हाल में कतर में हुई गोपनीय बातचीत के बारे में पाकिस्तानी अधिकारियों को जानकारी दी गई है। शांति वार्ता को जारी रखने को लेकर तालिबान के बीच मतभेद हैं। इराक के प्रधानमंत्री हैदर अल अबादी ने अमरीकी रक्षा मंत्री एश कार्टर से कहा है कि मोसूल के संघर्ष में फिलहाल तुर्की सेना की भूमिका की जरूरत नहीं है। कार्टर मोसूल में कथित इस्लामिक स्टेट के खिलाफ जारी संघर्ष की स्थिति की जानकारी लेने बगदाद पहुंचे हैं। मोसूल पर अधिकार हासिल करने के लिए इराक की सेना 6 दिन से कथित इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों से संघर्ष कर रही है। मोसूल में करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कराकोश में सबसे ज्यादा संघर्ष हो रहा है। इराकी सुरक्षा बलों का कहना है कि उन्होंने किरकुक शहर पर दोबारा अधिकार हासिल कर लिया है। किरकुक में कल इस्लामिक स्टेट के लड़ाके दाखिल हो गए थे। शहर से अब कर्फ्यू हटा लिया गया है। किरकुक के गवर्नर नजमुद्दीन करीम ने टीवी पर जारी बयान में कहा,
These terrorists managed to enter the city in the last 2 days.
ये चरमपंथी बीते 2 दिन के दौरान शहर में दाखिल हो गए थे। उनका मकसद पुलिस मुख्यालय और कुछ राजनीतिक दलों के मुख्यालयों पर कब्जा करने का था। अपनी कोशिश के दौरान वो किसी भी इमारत पर कब्जा करने में नाकाम रहे। सिर्फ इतना ही नहीं, जिन लोगों ने उन जगहों पर कब्जा करने की कोशिश की थी वो सभी हमारे सुरक्षा बलों की कार्रवाई में मारे गए। ये थे किरकुक के गवर्नर के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। सोमालिया के समुद्री डाकुओं ने करीब 5 साल पहले जिन 26 लोगों को बंधक बना लिया था वो आज़ाद हो गए हैं। उनके जहाज को मार्च 2012 में शेशल्स से अगवा कर लिया गया था। ये साफ नहीं है कि उनकी रिहाई के लिए कोई फिरौती दी गई या नहीं, लेकिन उनकी रिहाई में स्थानीय समुदाय ने अहम भूमिका निभाई थी। रिहा हुए लोगों में से ज़्यादातर पूर्वी एशियाई देशों के नागरिक हैं। हाल के वर्षों में सोमालिया के तट पर समुद्री लूट की घटनाओं में कमी आई है। बॉलीवुड के फिल्म निर्माता करण जौहर की फिल्म ए दिल है मुश्किल का विरोध कर रही महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने कहा है कि वो अपना विरोध वापस ले रहे हैं। राज ठाकरे ने यह ऐलान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और करण जौहर के साथ हुई मुलाकात के बाद किया। बीबीसी समाचार।
नेता बोले, अफसर बोले, पैसा बोला, बंदूक बोली, अभिनेता विलेन बोले, नहीं बोल सके तो बस आप। अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल, बीबीसी इंडिया बोल।
दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश चीन और भारत का आपसी इतिहास उतार चढ़ाव वाला रहा है। दोनों की सीमाएं लगती हैं, दोनों देश एक दूसरे से युद्ध लड़ चुके हैं और दोनों देश ही क्षेत्र में वर्चस्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दूसरी तरफ चीन भारत का एक बड़ा व्यापारिक सहयोगी है और भारतीय उद्योग परिसंघ के अनुसार वर्ष 2007 से दोनों देशों के व्यापार में हर साल 15% की बढ़ोतरी हो रही है। भारतीय बाजार में चीनी माल छा चुका है, ये कहना गलत नहीं होगा। अब एक वर्ग है जो ये मांग कर रहा है कि चीनी माल पर रोक लगाई जाए। कांग्रेस के साथ स्वदेशी जागरण मंच, यहाँ तक कि बाबा रामदेव का कहना है कि चीनी सामान की खरीद बिक्री पर रोक लगे। लेकिन क्या चीनी माल का बायकॉट संभव है? इस वैश्वीकरण के दौर में बायकॉट की राजनीति के क्या मायने हो सकते हैं? स्वागत है आपका इंडिया बोल में। हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार भारत भूषण मौजूद हैं। स्वागत है आपका भारत जी। वहीं कार्यक्रम में हमारे साथ मुफ्त फ़ोन लाइन पर शामिल हो चुके हैं 1811 7000 और 1811 2 पर 7001 पर श्रोता जुड़ चुके हैं हमारे साथ। देखते हैं हमारे साथ कौन पहला श्रोता है।
हेलो
जी, अपना नाम बोलिए।
मैं मोहम्मद शफी जागल जम्मू कश्मीर मेंढर से बोल रहा हूँ। मोहम्मद शफी जागल सर
जी। मोहम्मद शफी, आप पूरा विषय जानते हैं, मुद्दा जानते हैं और इसी बस एक हफ्ते बाद ही दिवाली है। आप भी मैं जी, मान जी, रही हूँ कि श्रीनगर में भी बाजार सजा होगा, दिवाली का माहौल होगा दिल्ली में, और यहाँ पर तो साज सजावट का सामान एकदम छाया हुआ है, पटाखे, मोबाइल, किसी भी वस्तु की बात की जाए तो चीन में बने उत्पाद भारतीय बाजार में दिख जाएंगे। लेकिन ये जो बहिष्कार की मांग हो रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप कि रोक लगने की बात हो रही है?
देखो सर, बात ये है कि बेशक हमारे मुल्क को कुछ देश जो है वो बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि हमारा मुल्क जो है ताकतवर होता जा रहा है, बर्दाश्त नहीं करते, ये हमें भी पता है। लेकिन जहां तक हेलो
जी सुन रहे हैं आपकी बात, बोलिए।
लेकिन जहां तक व्यापार का तलक है, कुछ चीजें हमारी भी जो तो वो चाइना में जाती हैं, उसका फायदा हमारे देश को भी होता है। कुछ चीजें जो है चाइना से हमारे देश में आती हैं, हमारे लोगों को फायदा होता है। कुछ सस्ती चीजें हैं चाइना की जो हमारे गरीब आवाम को फायदा होता है। इससे इसलिए जो व्यापार है इसमें खलल नहीं डालना चाहिए, व्यापार जो है वो चलना चाहिए, क्योंकि लोगों को फायदा होना चाहिए। जहां तक बाकी रही हमें अपने मुल्क को ताकतवर बनाने के लिए दफाई लिहाज से, फौजी लिहाज से, टेक्नोलॉजी लिहाज से, तो वो हमें खुला मैदान है, हमें ताकतवर बनना चाहिए, हमें चीन के साथ मुकाबला करना चाहिए और हमें अपना मुल्क को हर लिहाज से ताकतवर करना चाहिए। जैसे हमारे वजीर आजम जनाब मोदी साहब हैं, दुनिया में जा रहे हैं, दुनिया में अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, वो दुनिया से मुआवजे करा रहे हैं, और उनकी जो उनकी बैरूनी पॉलिसी जो है।
जी मोहम्मद जी, यहाँ पर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर चीनी सामान की बात हो रही है। और आपने कहा कि बहिष्कार नहीं होना चाहिए, लेकिन ये बताइए कि आपने बोला कि फायदा हो रहा है, लेकिन उन जो छोटे लघु उद्योग वाले हैं जो इस बहिष्कार की मांग करें, उनका कहना है कि छोटे लघु उद्योग जो चलाते हैं उनको नुकसान हो रहा है इसका।
देखो सर, बात कहाँ को, किसी को कोई नुकसान नहीं हो रहा। देखो स्वामी साहब जो बात कर रहे हैं, मैं कहता हूँ कि चीज हमें सस्ती दामों पर कौन देगा, हमें सस्ते रेट पर कोई देगा? गरीब को देहात में सस्ती चीज कहाँ मिलती है?
लेकिन वही सामान क्या भारत में ही सस्ता नहीं मिलना चाहिए जो चीन से लाया जा रहा है?
देखो सर, भारत में कहाँ किसी को कहो ना सस्ते दामों पर बेच दें, ये तो बाहर से इंपोर्ट होती है। जब चीजें आती है तो यहाँ पर सस्ती हमें मिलती है, कहाँ सस्ती मिलती थी आज से 20 साल? यहाँ पर कौन सी चीज हमें सस्ती मिलती थी? कोई चीज सस्ती नहीं मिलती थी। एक टारिच एक रेडियो था 1000 रुपए से मिलता था, अब रेडियो की कीमत है 200-300 रुपए, टार्च की कीमत है 100 रुपए, टार्च 1000 रुपए में मिलती थी, जीप टार्च जो थी 500-600 रुपए में मिलती थी। तो फिर ये चीजें सस्ती हुई, पब्लिक को फायदा है, फायदे की तरफ हमें जो है काम करना चाहिए ना, फायदे की तरफ।
जी मोहम्मद जी, आपने अपनी बात बहुत खूबसूरती से रखी है, बहुत बहुत धन्यवाद अपनी बात रखने के लिए। अगले श्रोता की तरफ बढ़ते हैं जी, अपना नाम बताएं। जी जी, आपने मोहम्मद शफी की बात सुनी, आप जी आपकी आवाज आ रही है, अपना नाम बताएं।
मैं भाटाघाट बीसी बिहार से सूरज मिश्रा बोल रहा हूँ।
जी सूरज जी, आपने मोहम्मद शफी की बात सुनी, उनका कहना है कि बहिष्कार नहीं होना चाहिए चीनी माल का।
पहले सुशीला जी आपको मेरी तरफ से नमस्कार।
जी नमस्कार।
और हाँ, मैं पूरे भारत वासियों से केवल कहूंगा नहीं बल्कि रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के कि आप विदेशी छोड़कर देसी को अपनाएं पहले, क्योंकि विदेशी अपनाने से बहुत घाटा हो रहा है। और जहां तक कि हम लोग जानते हैं कि इससे पहले जो चीनी कंपनी से मोबाइल एक लॉन्च हुआ था, उसमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया था जो कि हम जो बातचीत करते थे आपस में उसका रिकॉर्डिंग जो है ना वो पूरा डिटेल्स जानता था और सुनता था। इससे हम लोगों को बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा और साथ ही हम लोगों को पूरे देश को उठाना पड़ सकता है।
जी एक ही वस्तु की बात ना की जाए सूरज जी, यहाँ पर सारे सामानों की बात हो रही है। अगर मैं आपसे पूछूं,
मैं बोल रहा हूँ सारे सामान पे, और साथ ही दूसरी चीज के बाद अब जो इससे पहले एक मुद्दा था जो महंगाई की बात, तो महंगाई की बात और सस्ती वस्तु की बात, उससे मैं कहना चाहता हूँ कि चीनी वस्तुएं जो है ना डुप्लीकेट होती है, इसलिए वो वस्तु कम लागत में बनती है और हमारे देश में कम रेट में जाके बेची जाती है। लेकिन हमारी स्वदेशी वस्तु जो है वो बहुत सॉलिड होती है, बहुत इसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा होता है, इसलिए थोड़ी महंगी जरूर होती है, लेकिन इसका अगर यूज करें तो इसे हमें बहुत फायदा होगा।
ये आप दावे के साथ कैसे कह सकते हैं कि जो भारतीय सामान होता है वो मजबूत होता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि चीनी सामान न केवल सस्ता सुंदर है बल्कि टिकाऊ भी है। अभी मोहम्मद शफी भी यही बोल रहे थे।
हम भी इससे पहले यूज किया हूँ, मैं दुर्भाग्यवश उसको यूज किया हूँ और इससे मुझे बहुत घाटा हुआ है। खास करके इसके लिए भारत के गरीब लोग जो है ना वो बहुत प्रभावित होते हैं, क्योंकि गरीब लोग जो सस्ती वस्तु पे ज्यादा आती हैं, बोलते हैं विदेशी जो है सस्ता है जबकि भारत का महंगा वस्तु है।
तो स्वदेशी सामान को क्यों बढ़ावा दिया जाना चाहिए आपकी नजर में?
किसको
स्वदेशी सामान को क्यों बढ़ावा दिया जाना चाहिए?
स्वदेशी सामान को बढ़ावा इसलिए देना चाहिए कि उसका प्रोडक्ट भी अच्छा होता है, प्रोडक्ट हिसाब से जो है ना इसका मूल्य भी लागत भी कम है और स्वदेशी अपनाने से बहुत सारे फायदा है। अपनी वस्तु अपनी जो राशि है ना अपनी देश में जाती है, इससे अपना विकास हो सकता है अच्छी तरह से।
जी अपना विकास हो सकता है। सूरज जी बहुत बहुत धन्यवाद अपनी बात रखने के लिए। भारत भूषण जी आपको भी शामिल करना चाहेंगे बस थोड़ी देर में, लेकिन पहले बात करती है चीनी सामान के विरोध की जो चर्चाएं हो रही हैं, आवाज़ उठ रही हैं। स्वदेशी जागरण मंच चीनी सामान का विरोध कर रहा है और संगठन के राष्ट्रीय संयोजक अरुण ओझा का कहना है कि भारतीय बाजार पर विदेशी सामान का प्रभुत्व हो रहा है। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है।
स्वदेशी जागरण मंच पिछले काफी समय से स्वदेश में बनी हुई वस्तुओं को प्राथमिकता दे रहा है कि जनता उन्हीं चीजों को स्वीकार करे ताकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था ठीक रहे। यही हमारे बाजार में चीन की वस्तुओं की बाढ़ चली आई है जिसके कारण हमारे देश का व्यापार घाटा बढ़ रहा है, वह तो एक विषय है, लेकिन हमारे बाजार की गुलामी भी बढ़ रही है, हमारे बाजार पर विदेशी वस्तुओं का प्रभुत्व हो रहा है। तो इसलिए हम ये आंदोलन चला रहे हैं कि देश की जनता जो विदेशी वस्तुएं हैं, खास करके चीनी वस्तुओं की तो बहुत भरमार हो गई है, तो खास करके चीनी वस्तुओं का परित्याग करें और अपने देश में बनी हुई चीजों को स्वीकार करें। एक बार जब हम विदेशी वस्तुओं को छोड़ते हैं तो हमारे देश के लोगों की भी आय बढ़ेगी। आज विदेशी जो चीन की वस्तुएं या अन्य विदेशी वस्तुएं भारतीय बाजार में आई है तो इसके कारण हमारे लघु उद्योग बंद हो रहे हैं, हमारे कामगार बेरोजगार हो रहे हैं, हमारे छोटे छोटे जो कारीगर हैं मिट्टी के दिए बनाने वाले हैं या और छोटे लुहार हैं, कुम्हार हैं, बढ़ई हैं, ये सब हमारे बेरोजगार हो रहे हैं, तो उनकी आय तो खत्म हो रही है ना, तो हम तो उनकी आय बढ़ाना चाहते हैं।
तो स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय संयोजक अरुण ओझा का कहना है कि लघु उद्योगों पर जो है वो असर पड़ रहा है चीनी सामान से। हमारे साथ 1800 पर एक और श्रोता जुड़ चुके हैं जो बहुत देर से लाइन पर हैं। जी अपना नाम बताएं।
हेलो सुशीला जी नमस्कार।
जी अपना नाम?
धीरेंद्र कुमार।
जी
वीरेंद्र कुमार, पोस्ट सुकृत, जिला सोनभद्र, उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ।
जी वीरेंद्र जी,
ये निश्चय ही स्वदेशी को अपनाना चाहिए, लेकिन ये जो लोग स्वदेशी के नाम पे चीनी सामान का विरोध कर रहे हैं तो ये डायरेक्ट विरोध क्यों कर रहे हैं? इसको विकल्प मिलने आए, ये जैसे कि अभी हमारे एक श्रोता जी ने कहा कि जो चाइना का सामान है हमारे लिए सस्ता पड़ रहा है, गरीबों तक पहुंची हुई जा रही है, इसलिए हम उसको अपना रहे हैं। तो यदि स्वदेशी चीजें हमको उसी कीमत पे या उससे थोड़ी सी कम कीमत पे अगर ये मुहैया कराती है हमारी सरकार या हमारे स्वदेशी आंदोलनकर्ता लोग या बाबा रामदेव अपनी कंपनी के थ्रू, तो हम स्वदेशी को अपनाएंगे। अगर आप कंपैरेटिवली देखें किसी भी प्रोडक्ट को, बाबा रामदेव के ही प्रोडक्ट को, कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है कि जो गरीब उसको अपना सके। उनका सरसों का तेल आप देख, मैं क्योंकि बाबा रामदेव का प्रोडक्ट यूज करता हूँ, मैंने
जी,
देखा
बाबा रामदेव की नहीं, अगर हम लोग सभी स्वदेशी, अगर स्वदेशी सामान की चर्चा हो रही है तो जी
चर्चा करें, तो टोटल स्वदेशी में आप देख रहे हैं कि इनके पास जो विकल्प विरोध की विकल्प है केवल विरोध के नाम पे, आप उसको प्रोडक्ट को मार्केट में अपने लाइए, लोग अपने आप उसको यूज करेंगे। और दूसरी तरफ ये वही कांग्रेस है, आप पिछले मतलब जो कांग्रेसी संगठन है पिछले 10 सालों में देखिए कि जो चाइना के प्रोडक्ट हैं पिछले 10-12 सालों में हमारे मार्केट में छाए हैं, यानी जो कांग्रेस आती है उसी के शासन से। और कांग्रेस पे के हमारे यहाँ लगता है जो प्रश्न की इन्होंने किसी तरह का विनिर्माण के क्षेत्र में या फिर निवेश के क्षेत्र में इन्होंने कोई योगदान नहीं किया या इनकी आर्थिक नीतियां बड़ी लुंजपुंज थी। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी जो है बाहर से कंपनियों को आमंत्रित कर रहे हैं निवेश करने के लिए, तो क्या अगर बाहरी कंपनियां हमारे
स्वदेशी स्वदेशी सामान का जो आप जिक्र कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं उनको बढ़ावा दिया जाना चाहिए, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जो सामान मिल रहा है स्वदेशी बाजार में है वो सस्ता होना चाहिए ताकि लोग,
तभी तो हम उसे अपनाएंगे ना मैम। अगर जो चीजें मुझे जैसे
जी 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 वीरेंद्र जी,
सब लोगों ने जो है चाइना फोन अपनाना शुरू किया और चाइना मार्केट
जी, तो आपका ये कहना है कि स्वदेशी सामान अगर ला रहे हैं, चाहे जो भी संगठन उसको लाते हैं या जो भी मंच उसे लाता है, तो उसे वो सामान जो है सस्ता मिलना चाहिए। भारत भूषण जी, आपको शामिल करना चाहेंगे, आप बहुत देर से मैं देख रही हूँ नोट्स बनाए जा रहे हैं श्रोताओं की बात सुन के। अब भारत और चीन के व्यापार की बात की जाए तो व्यापारिक संगठन फिक्की के दक्षिण एशियाई प्रभाग के मुताबिक भारत से चीन ने 9 अरब डॉलर जो है सामान निर्यात किया और करीब 61 अरब डॉलर का आयात किया गया है। ऐसे में विशेषज्ञों का कहना है कि भारत का चीन पर निर्यात को लेकर जो निर्भरता है, अगर विकास के संबंध में बात की जाए, ग्रोथ के संबंध में बात की जाए, तो सीमित है। तो ऐसे में क्या चीनी सामान पर रोक लगाना संभव है?
रोक लगाना संभव नहीं भी है और सरकार चाहती भी नहीं है। पिछले ही हफ्ते निर्मला सीतारमण हमारी जो वाणिज्य मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि सरकार का ऐसा कोई इरादा है नहीं, बल्कि सरकार चाहती है कि ट्रेड में बैलेंस आए। ट्रेड में बैलेंस आने के लिए दोनों सरकारों ने 5 साल का एक प्रोग्राम बनाया है कि क्या रास्ता अख्तियार किया जाए कि ट्रेड हमारा बैलेंस हो जाए। तो ये बॉयकॉट सरकार नहीं, सरकार का उसको सपोर्ट कुछ भी नहीं है। ये कुछ नासमझ लोग हैं जो कभी कहते हैं चीन की बातों, चीन की सामान का बहिष्कार किया जाए, कभी कहते हैं कि सारे विदेशी सामान का बहिष्कार किया जाए। अगर ऐसा है तो भारत क्यों WTO का मेंबर है, क्यों हम बाकी देशों के साथ आयात या निर्यात करते हैं? तो ये सब बेकार की बातें हैं। ये वैश्वीकरण का युग है, इसमें जिस चीज़ को ज़्यादा एफिशिएंटली ज़्यादा सस्ती बनाएगा उसका व्यापार बढ़ेगा, वो उसको निर्यात करेगा और बाकी लोग उसको आयात करेंगे। अगर भारत चीन से सस्ता सामान बनाना शुरू कर दे और एफिशिएंटली मैन्युफैक्चर करेगा तो चीन भारत से उन वस्तुओं का आयात करेगा।
जी हम सदर बाज़ार के एक व्यापारी हैं सुनील आहूजा, उनके पास भी चलेंगे। हमारी कोशिश हो रही है उनसे जुड़ने की, देखते हैं 1800 पे हमारे साथ कौन जुड़े हैं। जी अपना नाम बताएं।
हेलो, हाँ मैं नमस्कार।
जी नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं?
नरेंद्र यादव, उत्तर प्रदेश भदोही जिले से बोल रहा हूँ।
कौन बोल रहे हैं, आपका नाम नहीं सुन?
नरेंद्र यादव।
नरेंद्र जी, जी आप पूरी बहस सुन रहे हैं। ये अभी जो है भारत भूषण कह रहे थे कि जो चीनी सामान है उस पर रोक लगाना संभव नहीं है, पूरी बहस आप सुन रहे हैं, क्या आपके क्या विचार हैं?
जी मैं कहना चाहता हूँ जो भी चीनी बहिष्कार का सामान का बहिष्कार हो रहा है ये जायज है, लेकिन इसके पहले हमें जो है एक स्थायी विकल्प अपना लेना चाहिए, इसके बाद ही हमें जो है चीनी सामान का बहिष्कार करना चाहिए। और मैं इनके भारत भूषण के मतलब मतों से समर्थन करता हूँ कि ये जो कहते हैं कि मैं मतलब कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ये सदस्य जो बना है ये अच्छी बात है, लेकिन कि ये जो है व्यापार घाटा नहीं होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए और भारत को ऐसा सामान मतलब स्वदेशी सामान बनाना चाहिए जो कि यहाँ की जनता के लिए स्थायी हो, टिकाऊ हो और चीन के सामानों का मतलब प्रतिस्पर्धा कर सके।
जी प्रतिस्पर्धा कर सके। नरेंद्र जी अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते हैं अगले कॉलर हमारे साथ कौन जुड़े हैं। जी अपना नाम बताइए।
जी मैं मोहम्मद आरिफ बोल रहा हूँ, शाहगंज डिस्ट्रिक्ट जौनपुर से।
जी मोहम्मद जी, आपने नरेंद्र जी की बात सुनी, उनका कहना है कि जो भारतीय सामान है वो भी टिकाऊ होना चाहिए ताकि और सस्ते में उपलब्ध हो सके, आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं?
जी ऐसा तो होना चाहिए, लेकिन चाइना से जो सामान आते हैं वो सस्ते भी होते हैं और अच्छे भी होते हैं।
तो आप क्या चीन से माल आता है, सामान आता है, वो आप खरीदते हैं?
जी खरीदते तो हैं, क्या करें वही सस्ता मिलता है। अगर इंडिया में उसका कंपटीशन लेना है तो पहले उसका प्रोडक्ट उसके सेक्टर में बना ले, तो फिर चाइना भी फेल हो जाएगा इंडिया के आगे।
जी चाइना भी फेल हो जाएगा। अगर भारत भूषण जी, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन ट्रेडर्स का ये कहना है कि चीनी सामान की बिक्री में 30% की गिरावट आ रही है और इससे जो है भारतीय व्यापारियों को ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है क्योंकि चीन से तो माल आ चुका, लेकिन और सरकार का जो रवैया है अभी तक, जैसे बात भी हो रही थी हमारी कि सरकार ने किसी तरह की पाबंदी नहीं लगाई है, लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया पर अब चर्चाएँ गर्म हैं, लोग कह रहे हैं कि चीनी माल का बहिष्कार हो, तो इन व्यापारियों का क्या?
व्यापारियों को नुकसान होगा और यही व्यापारी भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर्स हैं, तो पार्टी को चाहिए और सरकार को चाहिए कि रेडियो पे आके टीवी पे आके कहे कि चीन हमारा ट्रेडिंग पार्टनर है, उसके खिलाफ कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। कूटनीतिक लिहाज से भी अच्छा रहेगा, क्योंकि आपने पाकिस्तान के साथ एक फ्रंट खोला हुआ है, आप दूसरा फ्रंट क्यों खोलना चाहते हैं, वो भी इकोनॉमिक फ्रंट जहाँ आपकी डिपेंडेंस उनके ऊपर ज़्यादा है, उनकी कम है। वहाँ से जो ये लोग कह रहे हैं स्वदेशी बनाना चाहिए, स्वदेशी बनाना चाहिए, क्या चीज़ें हम वहाँ से मंगाते हैं? चीन से आ रही हैं चीज़ें जो वो हैं टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंट्स, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर पेरिफेरल्स, फर्टिलाइज़र, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स, ड्रग इंटरमीडियरी जिससे दवाइयाँ बनती हैं, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये अगर हिंदुस्तान में सस्ता बनेगा तो लोग चीनी नहीं खरीदेंगे, जैसे कि आपके एक श्रोता ने कहा, लेकिन वहाँ सस्ता बन रहा है, गारंटीड भी है, लेनोवो के कंप्यूटर वहाँ से आ रहे हैं, आपके आईफोन वहाँ से आ रहे हैं, और जो लोग बॉयकॉट की बातें कर रहे हैं वो उन्हीं चाइनीज सेलफोन का इस्तेमाल करके कर रहे हैं बॉयकॉट करिए। तो उन्हें भी सोचना समझना चाहिए कि क्या वैश्वीकरण के ज़माने में आप ऐसा काम कर सकते हैं। केवल एक चीज़ हो सकती है, अगर भारत को लगता है कि किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रोडक्ट में चाइना यहाँ पर डंपिंग कर रहा है, डंपिंग का मतलब है कि भारत में भी वो प्रोडक्ट बन रहा है लेकिन उसको आर्टिफिशियली लो दामों पे आप भारत के मार्केट में डाल रहे हैं ताकि भारत की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी उस प्रोडक्ट की ख़त्म हो जाए, तो WTO में प्रोविज़न है कि आप उनके खिलाफ एंटी डंपिंग केस चलाएँ। भारत ने करीब 280 के करीब एंटी डंपिंग केसेस रेज किए हैं, उसमें से आधे से ज़्यादा चीन के खिलाफ है
जी।
तो जहाँ एंटी डंपिंग होगी, जहाँ पे अनफेयर ट्रेड होगा, वहाँ पे आप उस मामले को उठा सकते हैं, जहाँ फेयर ट्रेड है वहाँ पे बॉयकॉट का सवाल उठता ही नहीं है
जी। वैश्वीकरण की आपने बात की और इस वैश्वीकरण के दौर में क्या बॉयकॉट की राजनीति काम कर सकती है, इस पर भी आगे बढ़ेंगे। लेकिन हमारे साथ अभी सदर बाज़ार के एक व्यापारी हैं, सुनील आहूजा, वो जुड़ चुके हैं। सदर बाज़ार जो है दिल्ली का खुदरा थोक बाज़ार माना जाता है, जहाँ आपको हर तरह की चीज़ें मिल जाएंगी। सुनील, इन दिनों तो बाज़ार में काफ़ी रौनक होगी, त्यौहार का मौका है, ख़रीदारी भी लोग खूब कर रहे होंगे, और जिस तरह से मांग उठ रही है कि चीनी माल पर रोक लगाई जाए, योग गुरु बाबा रामदेव कह रहे हैं, देशी जागरण मंच कह रहा है, और भी सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार चल रहा है, क्या आप बाजार में हैं, क्या लोग चीनी माल खरीद रहे हैं?
जी बिल्कुल, मैं अभी अपने बाजार में ही हूँ, सदा बाजार में। और जहाँ तक बात इस बारे में चल रही है कि वहाँ से माल हमें नहीं खरीदना चाहिए, वहाँ के माल को रोक देना चाहिए, सदा बाजार एक ऐसी मार्केट है जिसके अंदर मेरे ख्याल से 80-90% चाइना का सामान है, और इस माल को आप जैसे भी देखें, जिस भी तरीके से देखें, इसकी वैरायटी, उसकी अपराइजिंग के और तरफ चलें तो भी बहुत बहुत बड़ी। और जहाँ तक इस बारे में एक बात उठी है कि बॉयकॉट किया जाए, और इस चीज़ से मैं ये मानूंगा कि पिछले साल से इस साल थोड़ा सा इफेक्ट ज़रूर आया
जी। कितना असर हो रहा है, क्योंकि जो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन ट्रेडर्स है उनका कहना है कि बहिष्कार के कारण जो है चीनी सामान की बिक्री में 30% की गिरावट आ सकती है, उनका ये कहना है, क्योंकि आप खुद एक व्यापारी हैं, तो किसको नुकसान हो रहा है?
गिरावट देखिए, बिजनेस पे तो टोटल अफेक्ट है। जहाँ तक गिरावट की बात है, अभी बात शुरू हुई है, आगे चल के देखते हैं होता क्या, बाकी अभी इतना नहीं।
लेकिन लोग जब आपके पास आते होंगे माल लेने, तो क्या वो ये कहते हैं कि नहीं हमें चीनी माल नहीं चाहिए, हमें अब की बार भारतीय सामान ही चाहिए?
जी हमारे
क्या,
पास
क्या रुख रहता है उनका?
कुछ कस्टमर्स ऐसे आए हैं जिन्होंने हमसे आके बात करी है कि हमें चीनी सामान, हमारे पास कुछ ऐसे कस्टमर आए जो हमारे पास गैलरी के कस्टमर आते हैं, उन्होंने हमें आके बताया है कि उनके पास कुछ कस्टमर ऐसे आए हैं जिन्होंने आके बात बोली कि हम चाइना का सामान नहीं लेंगे।
और अगर तुलना की जाए, जिस तरह से कहा जाता है कि चीनी सामान सस्ता, सुंदर, टिकाऊ है, क्योंकि आप खुद व्यापारी हैं, तो क्या एक एक ये इम्बैलेंस देखते हैं आप रेट्स में? और
जी बिल्कुल है, आप हमारे, मैं खैर इस वक्त दिल्ली की अगर बात करूं तो जितने भी दिल्ली के कस्टमर्स हैं, या फिर आपने कई जगहों पर देखा होगा 99 बाजार, चाइना बाजार 100 रुपये के अंदर आपको आइटम मिल जाती है, तो क्या हमारे यहाँ पे इतने की मिल सकती है? और हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं।
तो क्या इस तरह की मांग आती है कि चीनी माल आए बाजार में, वो चीनी माल ही खरीदना चाहते हैं?
बिल्कुल, और आप जो इस वक्त मुझसे बात कर रहे हैं, मेरे पास एक सिंगल आइटम इंडियन नहीं है, मेरे पास टोटल आइटम ही चाइना।
पर ऐसा क्यों भारतीय सामान क्यों नहीं खरीदना चाह रहे हैं लोग?
क्योंकि वो जो वैरायटी चाहते हैं, जो उनको प्राइसिंग चाहिए, वो हम यहाँ से दे ही नहीं पाते।
और इसका कुछ कारण देखते हैं आप?
बिल्कुल, यहाँ की अगर हम लोग देखते हैं कि चाइना से हम कोई भी आइटम, एक सिंगल आइटम की अगर मैं बात करूँ, मेरे गिफ्ट आइटम का बिजनेस है, मैं अपने एक फोटो फ्रेम हम लोग बेचते हैं यहाँ पे, हम लोग 2500 रुपये के अंदर एक फोटो फ्रेम बेच देते हैं जो कि ग्लास का है, और अगर हम उसी को यहाँ पर बनाने की सोचे तो 2500 हमारी कॉस्ट भी नहीं आती
जी। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी अपनी बात रखने के लिए, और हम अगले श्रोता की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे श्रोता हमारे साथ कौन जुड़े हुए हैं जी। अपना नाम बताएं।
हेलो, मैं ब्रजेंदु सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से बोल रहा हूँ।
जी, पश्चिम बंगाल से बोल रहे हैं आप। अभी एक व्यापारी हैं सुनील आहूजा, माफ़ कीजिएगा मैं उनका गलत नाम बोल गई थी, सुनील आहूजा हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपने उनसे बातचीत सुनी होगी। वो कह रहे थे कि चीनी माल की बहुत ज़्यादा बिक्री है, उनकी उसकी मांग ज़्यादा है, वहीं बहिष्कार की भी मांग उठ रही है, क्या कहना चाहेंगे आप?
जी जी, मेरा ये सजेशन है कि किसी भी कंट्री के सामान का बहिष्कार तो नहीं होना चाहिए, 100% बायकॉट नहीं होना चाहिए। सामान की गुणवत्ता के बारे में जो पब्लिक को समझना चाहिए कि सामान टिकाऊ है या सामान में हम कितना मतलब कितना पैसा उसको देके खरीद रहे हैं, क्या उसके अनुसार वो सामान क्या उतना टिकाऊ है। तो अगर पब्लिक अपनी समझदारी से उस सामान को खरीदती है तो मतलब कि उसमें कोई वो नहीं है कि आप चाइना का सामान या अमेरिका का सामान आप खरीदें या किसी देश का सामान ना खरीदें। तो बायकॉट नहीं होना चाहिए, लेकिन पब्लिक की समझदारी से उसको सामान खरीदने का अपना वो होना चाहिए बस।
जी, अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत भूषण जी, ये पूछना चाहेंगे कि मेक इन इंडिया का नारा दिया है सरकार ने, क्या उतनी कैपेसिटी दिखाई देती है? सरकार कहती है कि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए ताकि रोज़गार के साधन बढ़ें, लेकिन जैसे कि आपने व्यापारी को ही सुना एक जो कह रहे थे कि वैसा माल बनता ही नहीं है, और बनता है तो महंगा होता है।
ये बात सही है कि चाइना में वेज एडवांटेज है उनको, तो इसी कंपैरेटिव एडवांटेज के रहते हुए हम वहाँ से आयात करते हैं। लेकिन ये भी तो है कि हम चीन के मैन्युफैक्चरर्स को कह रहे हैं कि यहाँ पे आप फैक्ट्री लगाइए। पिछले 2 महीने पहले ही चाइना का जो वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर है हुआई, वो इंडिया में फैक्ट्री लगा रहा है। इससे पहले नोकिया की फैक्ट्री थी लगी हुई, वो सब इंडिया में बन रहे हैं। तो जो सामान आप वहाँ बनाते हैं, भारत कहता है यहाँ भी बनाइए ताकि हमारी हमारा स्किल लेवल बढ़े, हमारा एफिशिएंसी बढ़े, हमारा मैन्युफैक्चरिंग बढ़े। तो मेक इन इंडिया और दुनिया के साथ ट्रेड करने में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, एक दूसरे के विरुद्ध नहीं है ये बातें। आप यहाँ मैन्युफैक्चर भी कर सकते हैं, निर्यात भी कर सकते हैं, आयात भी कर सकते हैं, कंपैरेटिव एडवांटेज का सवाल है।
तो अगर बीजेपी की नीति की सरकार की नीति की बात की जाए तो क्या नीति स्पष्ट है इसे लेकर, पूरे चीन के माल को लेकर और जो बहिष्कार की मांग उठ रही है उसे लेकर?
मेरे ख्याल से तो बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि हम चीन के साथ व्यापार बढ़ाना चाहते हैं। अगर नहीं बढ़ाना चाहते तो आप शी जिनपिंग को, उनके राष्ट्रपति को गोवा नहीं बुलाते ब्रिक्स की समिट के लिए। ब्रिक्स एक ट्रेड ग्रुपिंग है जो चाहता है कि ये जो ब्रिक्स के देश हैं ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इमर्जिंग इकोनॉमी, ये आपस में कैसे अपना ट्रेड बढ़ाए। और वहाँ पे डिक्लेरेशन भी किया हमने कि हम चीन के साथ अपना ट्रेड बढ़ाएंगे। तो ये नासमझ लोग हैं कुछ, जो सड़कों पे आके कह रहे हैं या सोशल मीडिया में जाके कह रहे हैं कि चाइनीज़ वस्तुओं का बॉयकॉट करें, या स्वदेशी जागरण मंच जिसको गुलामी कह रहे हैं उसको ट्रेड में इंटरडिपेंडेंस कहते हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि भारत अपनी चारों तरफ एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर दे और हर एक चीज़ हम स्वदेशी जागरण मंच से या बाबा रामदेव से खरीदे।
तो क्या वैश्वीकरण के इस दौर में बॉयकॉट की राजनीति के क्या मायने हैं?
कुछ मायने नहीं है। वैश्वीकरण एक सच्चाई है, उसको आपको मानना पड़ेगा। कोई भी कंट्री वैश्वीकरण के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ सकती है, क्योंकि कोई भी देश ऐसा नहीं है जो सारी चीज़ें दुनिया भर की खुद ही बना ले। कुछ आप एफिशिएंटली बनाएंगे, कुछ मैं बनाऊंगा, जो आप सस्ता बनाएंगे और जिसकी गुणवत्ता ठीक होगी वो मैं आपसे खरीदूँगा, जो मेरी वस्तु ठीक होगी वो आपसे खरीदेंगे। ऐसे ही ट्रेड चलता है। इसी कारण सब दुनिया भर के देशों ने मिलकर WTO बनाया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उसके अंदर अगर आप अनफेयर ट्रेड करते हैं उसको आप उसको कोर्ट में ले जा सकते हैं WTO के सामने।
तो केंद्र सरकार ये कदम नहीं उठा सकती वो चीनी सामान को का बहिष्कार करे?
सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन जहाँ पे चाइना डंपिंग करेगा वहाँ पे, मैंने बताया आपको कि 170 से ऊपर केस भारत चीन के खिलाफ WTO में ले जा चुका है। लेकिन वो लड़ाई अलग लड़ाई है, वो बॉयकॉट की लड़ाई नहीं है, वो अनफेयर कंपटीशन की लड़ाई है।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज इंडिया बोल में हमारे श्रोताओं का शामिल होने का, और वरिष्ठ पत्रकार भारत भूषण हमारे साथ थे। इसी के साथ अब कार्यक्रम का अंत करने से पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
BBC समाचार। इराक के प्रधानमंत्री हैदर अल अबादी ने अमरीकी रक्षा मंत्री एश कार्टर से कहा है कि मोसूल के संघर्ष में फिलहाल तुर्की सेना की भूमिका की ज़रूरत नहीं है। कार्टर मोसूल में कथित इस्लामिक स्टेट के खिलाफ जारी संघर्ष की स्थिति की जानकारी लेने बगदाद पहुंचे हैं। इराकी सुरक्षा बलों का कहना है कि उन्होंने किरकुक शहर पर दोबारा अधिकार हासिल कर लिया है। अफगानिस्तान के एक राजनयिक का कहना है कि तालिबान के 3 वरिष्ठ सदस्य पाकिस्तान में हैं और उनकी पाकिस्तान के अधिकारियों के साथ कई दौर की बैठकें हुई हैं। सोमालिया के समुद्री डाकुओं ने करीब 5 साल पहले जिन 26 लोगों को बंधक बना लिया था वो आज़ाद हो गए हैं। उनके जहाज को मार्च 2012 में शेशल्स से अगवा कर लिया गया था। बॉलीवुड के फिल्म निर्माता करण जौहर की फिल्म ए दिल है मुश्किल का विरोध कर रही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने अपना विरोध वापस ले लिया है। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रहे थे वत्सल्य राय। इसी के साथ इंडिया बोल में बस इतना ही। आपसे घटना चक्र में 9:30 बजे फिर होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाजत।